ओम शांति। इस मनुष्य सृष्टि में सभी मनुष्यों का जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन ब्राह्मण जीवन गाया जाता है। लौकिक दुनिया में भी देखा जाता ब्राह्मणों से ही सब प्रकार के श्रेष्ठ कार्य कराते हैं और ब्राह्मणों के द्वारा ही उच्च कार्य मनवाते हैं। तो मुख्य ब्राह्मणों को निमित्त बना के ब्राह्मणों द्वारा चाहे शादी कराते, चाहे पूजा कराते, चाहे श्राद्धा कराते, कुछ भी कराते हैं, वो सब ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं। दुनिया में बहुत वैरायटी प्रकार के ब्राह्मण हैं। भोजन बनाने वाले भी ब्राह्मण हैं, लड्डू बनाने वाले भी ब्राह्मण हैं, श्राद्ध बनाने वाले भी ब्राह्मण हैं, अनेक प्रकार के ब्राह्मण हैं। वो उन क्वालिटी में ही वो लोग अटके हुए हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को केवल कल्प के इस संगम युग में ब्राह्मण बनाया। सबसे पहले हम बीके बनते हैं, तो बीके की क्वालिफिकेशन क्या है? जो भी बीके बने हैं वो हाथ उठाइए। जो नहीं हाथ उठाए वो बीके नहीं बने अब तक, ऐसा समझे? अच्छा, बीके उसको कहा जाता जिन्होंने 7 दिन का कोर्स पूरा किया है। सबका कोर्स पूरा हुआ? और जो सफेद ड्रेस पहने हैं, बैज भी पहने हैं, रोज क्लास में भी जाते हैं, मुरली सुनते हैं, योग भी करते हैं, धारणा भी करते हैं अपनी शक्ति अनुसार, और नियमित जीवन भी अपने शक्ति अनुसार अपनाते हैं, मधुबन में भी आते हैं, उनको बीके कहा जाता। तो आप सब बीके है ना? बीके कौन है? अच्छा, ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? हाथ उठाइए। आप लोग बीके ही ब्राह्मण है? बीके और ब्राह्मणों में बहुत फर्क है, क्योंकि बीके बनते हैं, रोज आना जाना करते, मुरली सुनते, पर धारणा पूरा नहीं करते। कई ब्राह्मणों को हम देखते रहते हूँ मंदिरों में। हमारी बड़ी दादी एक बार तिरुपति में आई थी, वहां सब तरफ के ब्राह्मण लोग आए हुए थे। हम लोग भी क्यों में गए थे वहां, तो रास्ते में आ रहे थे मंदिर से बाहर, मंदिर के बीच में लड्डू बिकता था। एक बाबा का बच्चा लड्डू ले रहा था। मैंने पूछा, आप लड्डू ले रहे? तो बोला, हमारे घर का भगवान है। तो इसका मतलब भीखे बना है, ब्राह्मण नहीं बना है। जो टीवी देखते वो ब्राह्मण नहीं है। सिनेमा में भले नहीं जाते, सिनेमा मंदिर में नहीं जाते, घर में बैठ के जो टीवी देखते वो ब्राह्मण नहीं है। भीखे नाम है लेकिन सच्चे ब्राह्मण नहीं है। कई लोग कहते हम बाहर का नहीं क्या खाते, अंदर का खाते। अंदर क्या होता है? ब्राह्मण, ब्राह्मणों के जीवन में 5 बातें होती है। जो सच्चे ब्राह्मण हैं, वो 5 बातों को धारण किए हुए होते हैं। पहला है ब्राह्मी मुहूर्त में योग करना, उठना और योग करना और मौन रहना। जो सच्चे ब्राह्मण हैं, अमृत वेला जो उठते हैं वो बिल्कुल मौन रहते हैं और बाबा के साथ सच्ची योग लगाते हैं, मिस नहीं करते कभी भी। हम दादियों को देखते इतने साल सारा पुरुषार्थ करते हुए भी अभी भी वे अमृत वेड़ा करते हैं। फिर हम लोग कैसे अमृत वेड़ा करते हैं? जो नेमिनाथ बन के योग करते हैं वो सच्चे ब्राह्मण नहीं है। बाबा ने भी मुरली में बोला है जो अमृत वेला उठ के योग करते वो पूरा समर्थ स्थिति में बैठते हैं, शक्तिशाली स्थिति में बैठ के बाबा से अनुभूति करते हैं, वो ब्राह्मण ब्राह्मी मुहूर्त का नियम पालन किया और भाग्य विधाता से वरदान की झोली भरते हैं। जो नियम पूर्वक अमृत वेले उठ के योग नहीं करते बाबा से क्या वरदान मिलता वो बिल्कुल अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते। वरदान लेना हो उसी श्रद्धा से उसी नियम से बैठ के योग करना है। कई लोग बैठ के नींद करते रहते आराम से, वो कोई ब्राह्मण जीवन नहीं है, भीखे जीवन है। जो भी नींद करते अपने को समझ लीजिए हम भीखे बने हैं, ब्राह्मण नहीं बने। ब्राह्मण माना आंख खुला रहता, आंख जिसका भी बंद रहता है ज्ञान योग में वो भीखे है, पूरा ब्राह्मण नहीं बना है। ब्राह्मण बने के बाद ही योगी कहा जाता है, योगी बन सकता, और संपूर्ण ब्राह्मण बनने के बाद वैष्णव बन सकता। तो ये सभी क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले सच्चे ब्राह्मण जीवन का अनुभूति करने की महान तीर्थ स्थान मधुबन भूमि है। आप लोग घर में भी नहीं करते हैं तो यहाँ भी नहीं करेंगे तो जीवन भर क्या होगा? अंत में वही स्थिति आ जाएगा जो आपने अभ्यास किया बहुत काल। अंत में शरीर छोड़ने के समय भी बाबा की याद आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए कई बाबा के बच्चों का हम सुनते हैं अमृत वेले उन्होंने शरीर छोड़ा। बाबा को याद करते करते उन्होंने अमृत वेले शरीर छोड़ा, माना कितना पुरुषार्थ किया है। तो इसलिए हमारे जीवन में अमृत वेला उठने का बहुत शौक रहना चाहिए, हमें उसके लिए इंतजार करना चाहिए। बाबा को रात को ही बोलना है, बाबा मुझे अमृत वेले उठ के आपके पास मिलना है। जो बाबा को बोल के सोते हैं वो बाबा उठाता है, कईयों का कटिया भी हिलाता है, कईयों का स्वप्न में भी जागृत हो जाते हैं, स्वप्न में आते हैं। तो इसलिए अमृत वेड़े का जो योग है वो भी बाबा के घर में मधुबन में कोई भी यहाँ बड़े बैठ के योग कराए, लेकिन आप सभी भाई बहने अपनी श्रद्धा से योग करें। कहाँ भी बैठे रहे, चाहे नीचे चाहे चेयर में, कहाँ भी बैठे रहे, लेकिन अपनी श्रद्धा से योगी बन के बैठ जाए तो बाबा ने भाग्य विधाता बाबा हमें जो वरदान देना है वो झोली भरता जाता है। और दूसरा हमें मौन भी रहना है, अमृत वेले उठ के कोई बात नहीं करना। आजकल हम लोगों ने बाबा से और दादियों से सुना है और नियम भी हमारा बना हुआ है, अमृत वेले से लेकर मुरली पूरा होने तक किसी को बात नहीं करना। अभी तो हम लोग बाबा से मिलने आए हैं तो हमें जितना बात नहीं करेंगे, मौन रहेंगे, शांति में रहेंगे, उतना हमें बाबा का अनुभव होगा। घर में भी बातें करते हैं, सबके साथ बातें करते, यहाँ भी बातें करते रहते हैं तो बाबा का किसी का अनुभव नहीं हो सकता। उसके लिए स्पेशली व्रत को पालन करना होगा। बाबा का अनुभव करने के लिए अमृत वेले का और सारा दिन का जितना आप बहुत जरूरी बातें करना है और बहुत कम धीमे स्वर से बात करना है उसी नियम को पालन करेंगे तो आपको बाबा का अनुभव बहुत अच्छा होगा। और बाबा भी खींच के आएगा उन बच्चों से मिलने के लिए। जो बच्चे शांत है, मौन है और बाबा के याद में खोए हुए हैं और बाबा से वरदान लूट रहे हैं, बाबा उसको लुटा रहे हैं, ऐसे बच्चों से मिलने लिए बाबा आते हैं। और बाबा के ऊपर दोष नहीं लगाना, बाबा नहीं आया, बाबा ठीक मिला नहीं, वो सब हमारे ऊपर है, हमारे दोष है बाबा को नहीं देना, हमारे दोष हमारे पास रख करके दोष से निर्दोष बनने का पुरुषार्थ करना। तो इसलिए सबसे पहले ब्राह्मी मुहूर्त जो है उसका विशेष पालन करना होगा, वही सच्चे ब्राह्मण है। मधुबन में भी ब्राह्मी मुहूर्त का अनुभव नहीं कर पाते, वो कहां भी नहीं कर पाते। या विशेष बाबा का पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान है, इस स्थान को देखने के लिए कई भगत लोग तरस रहे हैं और बच्चे बन के यहाँ बाबा के साथ नहीं बैठते, मन से बाबा से बातें नहीं करते, तो वो क्या अनुभव करेंगे। तो इसलिए अमृत वेड़े का, ब्राह्मी मुहूर्त का बहुत महत्व देना और अपना विशेष रूप से अपनी स्थिति को बना के रखना, अनुभव करना, ये लक्ष्य रख के इस नियम को पालन करना है। दूसरा है ब्रह्मा द्वारा ज्ञानेश्वर बाबा ने जो ज्ञानामृत हमें पिलाता है, वो भी रोज सुबह सुबह मुरली जो सुनते हैं वो ताजा मुरली, वो ब्राह्मणों का दूसरा नियम है ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा ज्ञानामृत सुनना, ज्ञानामृत को पान करना। अगर सुबह में मुरली नहीं सुनते हैं तो सारा दिन कई बातें सुनने को मिलेगा, क्योंकि बाबा के बातें नहीं सुना, बहुत ही व्यर्थ बातें सुनने को मिलेगा, आपसी संबंध बिगड़ेगा, व्यवहार भी नीचे ऊपर होगा, क्योंकि उन बातों का असर हमारे मन में कोई अच्छी बात नहीं है तो वो जल्दी पड़ जाता है। तो बाबा का याद और बाबा का मुरली अच्छी तरह हम सुन लेते हैं तो उसका असर हमारे मन में इतना पावरफुल होगा, सारी दुनिया की कोई भी बातें अचानक होगा तो भी हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता। आज हमारा देश में धन के ऊपर बहुत लोग नीचे ऊपर हो गए हैं, लेकिन बाबा के बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि उनके ज्ञान का धन बहुत है ना। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ब्रह्मा ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों, वो ज्ञान धन से है। जो ज्ञान धन से रिचेस्ट हो जाते हैं उनको गरीबीपन का कोई असर नहीं पड़ता, दुनिया में किसी भी बात का नीचे ऊपर होगा, परिस्थिति आएगा, समस्याएं होंगे, उसका असर दुनिया वालों को पड़ता, बच्चों बाबा के बच्चों को नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ज्ञान धन अच्छी तरह स्वीकार करना, अच्छी तरह मंथन करना, उसको अपना बना के रखना। अपने जिनको संगम युग में लिखना पढ़ना आता है, दादियां 12 बार 25 बार मुरली पढ़ते रहते हैं, उनको क्या पढ़ा है अभी तक पढ़ने का। लेकिन हम लोग एक बार भी सुनना बड़ा मुश्किल है, पढ़ने की बात ही नहीं है तो क्या होगा। इसलिए ब्राह्मण उनको नहीं कहा जाता, मुरली भी सुनने के लिए फुर्सत नहीं है, मुरली सुनने के लिए आनाकानी है, उनका कोई रेस्पेक्ट नहीं है, उनका सुनने का आकर्षण नहीं है, रोज आने का रेगुलर आने का नियम नहीं है, जब तक जीना है तब तक पीना है क्या नाम रख, ये उनका नियम नहीं है, तो वो कोई ब्राह्मण नहीं है, वो बीके है। कभी हफ्ते में एक दिन दो दिन आके थोड़ा बहुत बाबा की मुरली सुन के चले जाते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है, वो बीके हैं। ऐसे वाले भी बहुत बाबा को बाबा के बच्चे समझते हैं, भले सारी दुनिया वाले बाबा के बच्चे हैं, ये थोड़ा स्पेशल थोड़ा एक दो हफ्ते में दो दिन सुनने वाले मंदिर में भी जाने वाले भगत होते हैं, घर में भी रहने वाले भगत होते हैं, इसी हिसाब से ब्राह्मणों के हिसाब से सिर्फ हफ्ते में एक दिन दो दिन घर में मुरली सुनना, मोबाइल में मुरली देखना, और टीवी में मुरली देखना, वो उसी को ही समझ लेना, मुरली सुन लिया, वो भीखे है, वो ब्राह्मण नहीं है। अगर ब्राह्मण है तो संगठन में बैठ के मुरली सुनना है, उसका कोई बहाना नहीं बनाना। कई बाबा के बच्चे होते, बाबा जो बोलता मुरली सुनते सुनते जो गंगा के तट पर है उसका मुंह में गंगा हो और वो शरीर छूट जाए, उसका कितना धन्य है उसका श्वास। ऐसे कई बाबा के बच्चे मुरली सुन सुन के भी शरीर छोड़े हैं। आप लोग कहीं नहीं छोड़ना शरीर, लेकिन रोज जाके बाबा की मुरली सुनना। अपने स्थान पर जो रेगुलर सुनते हैं वो मधुबन में मुरली मिस नहीं करेंगे। कई भाई बहने सुबह सुबह भी मुरली के टाइम भी इधर उधर घूमते रहते हैं बाहर, क्यों? बाबा का मुरली के ऊपर इतना रेस्पेक्ट नहीं है उनको। जब बाबा आके, अव्यक्त बाबा डायरेक्ट आके मुरली सुनाता, उसको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि रोज मुरली सुनने का आदत नहीं है, उस मुरली का अनुभव नहीं है, अभ्यास नहीं है, धारणा नहीं है। तो बाबा जब अव्यक्त मुरली थोड़ा बहुत सुना रहा है वो भी समझ में नहीं आएगा, उसको बड़ी बात नहीं समझेंगे, उसका महत्व को नहीं जानेंगे। तो इसलिए बाबा के घर में आने के बाद भी बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करना। सच्चा ब्राह्मण जो होगा वो मुरली मिस नहीं करेगा। जो सच्चा नहीं सिर्फ बीके है वो बाहर घूमता रहेगा। अपने आप को समझ लीजिए, मैं बाहर घूम रहा हूँ, बीके हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ, है? मधुबन में भी आकर के सिर्फ बाहर घूम रहे हैं, है? कितना भाग्य है। इधर आने के बाद भी मुरली नहीं सुन सकते तो उसका क्या तकदीर है, है? उसका भाग्य क्या है? तो इससे ये सभी हमको सोचने की बात है, हमें ध्यान देना हम कौन से ब्राह्मण है। और तीसरी बात है, ब्राह्मण माना सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा भोजन करना। मधुबन में तो सब ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, उसमें कोई कसूर नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन घर में भी रोज ब्रह्मा भोजन खावे, घर में बनाने वाले भी अच्छा सात्विक भोजन बाबा का नियम अनुसार बनावे, खाने वाले भी वही उसी बाबा की याद से कावे। सेंटरों में भी बनता ही ब्रह्मा भोजन, सेंटरों में जो भोग खाते ब्रह्मा भोजन खाते वो बात अलग है, विशेष बात घरों की। और कई लोग होटल में भी खाते हैं, रिश्तेदार के घर में भी खाते हैं उनको संतुष्ट करने के लिए, वो ब्राह्मण नहीं है, वो बीके हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हमारे रिश्तेदार हमारे से नाराज हो जाते इसलिए हमको खाना पड़ता, हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे लेकिन दूसरा खाएंगे, है? कुछ भी बोले लेकिन वो सच्चा ब्राह्मण नहीं है। बाबा कहते हैं मधुबन में आने वाले सच्चे ब्राह्मण बन के आना, सिर्फ बीके बन के नहीं आना। कई लोग रास्ते में ट्रेन में ट्रैवल करते रहते वहां चाय पी लेते, क्यों? इतना एडिक्ट हो गए चाय पीने का, चाय पीने बिगर रह नहीं सकते। चाय बार पी लेते हैं तो बाद में थोड़ा खाने का भी दिल होता, फिर क्या मधुबन में आके अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए सच्चे ब्राह्मण को बाबा मधुबन में इनवाइट करता। ब्राह्मणियों के ऊपर बाबा ने बहुत जिम्मेवारी दिया, बाबा ने कहा सच्चे ब्राह्मणों को ले आना यहाँ पर, इसलिए नियम सभी लिख के देते हैं। आप कितने बरस से आहार शुद्ध है, कितना नियम पालन कर रहे हैं, रेगुलर क्लास है, सब लिख के दे देते हैं, लेकिन पालन नहीं है। हम जितना सच्चे ब्राह्मण बन के आते हैं तो बाबा के साथ हमारा इतना आकर्षण, बाबा का प्यार, और इस स्थान में जो कुछ क्लासेस चलता है अभी सारे दिन में आपको कितना क्लासेस मिलता, उन सब क्लासों में अटेंड करेंगे, क्योंकि बाहर कहाँ सुनेंगे, सेंटरों में कहाँ इतना आपको मिलेगा। मधुबन में आते हैं तो भाग्य है, यहाँ पर सारा दिन ज्ञान का चिंतन सुनना, ज्ञान जिन्होंने बाबा का ज्ञान को अच्छी तरह समझ करके, अच्छी तरह चिंतन करके, मंथन करके, धारणा करके, अपना बना करके सुनाते हैं, बड़े बड़े महारथी भाई बहने, उनका सुनना वो भी भाग्य है। क्लास के टाइम इधर उधर जाना, कुछ खरीद करना, अभी शायद खरीद करने के लिए भी पैसा नहीं है, होगा कम होगा इस टर्न में, वो सब कम हो जाएगा शायद है? फिर भी ध्यान रखना, इधर उधर नहीं जाए, पूरा हरेक भाई बहन का जो भी धारण तसस होगा वो पूरा अटेंड करें। ज्ञान का क्लास मधुबन का जो सुनते हैं वो भी ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, वो भी जाके दूसरों को ज्ञान सुनाना अच्छी तरह अनुभव हो जाता हूँ, क्योंकि मधुबन से जाने के बाद वहाँ अनुभव सुनाना होता है। क्या अनुभव किया? जो ज्ञान का क्लासेस ही नहीं सुने हैं, यहाँ देखे सामने सामने नींद करके बैठे हैं, है? तो नहीं सुना है, नहीं मंथन किया है, उसका अनुभव नहीं किया है, वो क्या अनुभव सुनाएंगे, है? इसके ध्यान रखना, हम जो बाबा के घर में आके प्रसाद लेके जाना है, प्रसाद माना अनुभव करके, योग में अनुभव करके, ज्ञान में अनुभव करके, वो अनुभव रूपी प्रसाद ले जाना है सबको बांटने के लिए। सभी भाई बहने मधुबन में आते हैं तो अपने रिश्तेदार के लिए, सेंटरों के भाई बहनों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ले जाते हैं, बाहर का बेचने वाली चीजों का, वो नहीं, वो क्या है, अल्पकाल का, दुनिया वाले भी काम करते हैं, वही हम लोग करते हैं, उसमें कोई विशेषता नहीं है। हम लोग अपना अनुभव यहाँ क्या करते, अपने जीवन में क्या महानता लाए, हमने परिवर्तन क्या लाए, परिवर्तन के लिए कौन सा स्टेप हमने आगे उठाया, क्या क्या दृढ़ संकल्प किया, वो सब आप सुनाए तो सबके ऊपर बहुत असर पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकल करके दूसरों को सुनाए तो। इसलिए बाबा की मुरली सुनना, बाबा का मुरली का क्लासेस जो सारा दिन सुनते हैं वो सच्चे ब्राह्मण हैं। और चौथा नियम है, चौथा हो गया, तीन हो गए ना, अभी चौथा नियम है ब्रह्मचर्य पालन करना। जो ब्रह्मचर्य पालन करता वो ही मधुबन में आ सकते हैं, वो ही सच्चा ब्राह्मण है। दुनिया में चैलेंज है, सब लोग डरते हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ना जाए, वहां पर तो भाई बहन बना लेते, वहां पर तो ये पवित्रता धारण करा लेते, ये क्या क्या बातें, वो लोग डर के मारे क्या क्या हमारे ऊपर अपवाद करते हैं। लेकिन बाबा का चैलेंज है, जो गृहस्थी है दुनिया में, जो पवित्र बने केवल साधु संत बने, वो भी थोड़े लोग, कितना 7.5 करोड़ों में कितने संत बने हैं, थोड़े से। लेकिन बाबा ने सारे दुनिया के सब बच्चों को ब्रह्मचारी पवित्र बच्चे बनाना चाहता है। जो ब्राह्मण बने हैं अगर ब्रह्मचारी को धारणा नहीं करते, पवित्र नहीं रहते, वो सच्चा ब्राह्मण नहीं है। जो ब्राह्मण पवित्रता को धारणा करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करते हैं, वो ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण बनके दूसरों का आदर्श होता, उसको बहुत रेस्पेक्ट होता, उस व्यक्तित्व का बहुत वैल्यू होता। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, दुनिया में क्या वैल्यू है, लौकिक ब्राह्मण होते हुए भी, पूजा करते हुए भी, कितना भी वो लोग ब्राह्मण समझ के काम करे, लेकिन वो कोई ब्रह्मचारी नहीं है, वो कोई पवित्रता को धारणा नहीं करते, वो कोई शुद्ध जीवन को अपनाते नहीं है। भले मंदिर में पूजा करते, गर्भगुड़ी में पूजा करते, लेकिन इतना पवित्र जीवन कहाँ है उनका। बाबा ने हम बच्चों को सच्चा ब्राह्मण बनाया, हम जितना उसको जिंदगी भर में, लौकिक में अयप्पा स्वामी के पास जाते एक मास के लिए, ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं, उनका नियम सारा एक मास है, 15 दिन है, बाद में जाने के बाद वही की वही। कई ब्राह्मण बच्चे बीबी के वाले कहते हैं, हम मधुबन आके जाके आने तक पवित्र रहेंगे। माना वो भगत जैसा, वो जो ब्रह्मचर्य पालना का व्रत को पालन करके अपना जीवन को योग्य बनाना है ना, वो बना नहीं सकते। इसलिए बाबा माताओं का बहुत मान्यता देता। कई माताएं अबलाए हैं बंधन वाली, वो पवित्रता के लिए कितना मार खाती है, कितना उसको मार पीट के बाहर फेंकते हैं भाई लोग, तो भी वो माताएं नहीं छोड़ती है। बाबा के लिए कुछ भी हो जाए मुझे पवित्र रहना ही है। ऐसे जो पवित्रता को धारणा करते वो सच्चे ब्राह्मण। पवित्रता के लिए कोई बंधन नहीं है। हा? कौन आता है साथ में? कोई स्त्री आती है पुरुष के साथ, या पुरुष के साथ स्त्री के साथ कोई पुरुष जाता है? नहीं, कोई साथ नहीं आए, कोई साथ नहीं जाएंगे, तो पवित्रता के लिए क्या बंधन है? हमारा जीवन को पवित्र बना के बनाने के लिए परम पवित्र बाबा हमें ये शक्ति दिया, ये जन्म दिया। इस जन्म में अंत तक हमको इसका पालन करना, ये हमारा परम सौभाग्य है। हमारा जीवन की श्रेष्ठता मान्यता हो जाता है अपने आप। कोई भी आपको देखेंगे, आपका जीवन का असर लोगों के ऊपर पड़ता। जो ब्रह्मचर्य पालन करता, जो रेगुलर मुरली सुनता, जो आहार शुद्ध रहता, ब्रह्मा भोजन खाता, कोई होटल में नहीं खाता, दुनिया वाले परखते हैं ये ब्रह्मा कुमार होटल में क्यों बैठा है, ऐसा वो लोग सोचते हैं। वो भले खुद खाते रहते लेकिन ब्रह्मा कुमार का रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा उनके मन में प्रिंट हो गया है। फिर हम लोग कितना ध्यान देना पड़ेगा। हमको अगर सच्चे ब्राह्मण रहना है तो ये ब्रह्मचर्य पालना को भी बहुत मान्यता देके धारण करना है, जिससे हम बाबा के बहुत नजदीक होंगे। परम पवित्र बाबा के साथ मिलन करना, जो ब्रह्मचर्य नहीं है उनका मन बाबा के साथ लगेगा नहीं। कई लोग बोलेंगे हम योग करते बाबा के साथ बुद्धि ऊपर जाता ही नहीं है। क्यों? जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते, अपवित्र रहते, उनका मन कितना चंचल होगा, कितना विचलित होगा, कितना व्यर्थ होगा। तो उसका मन अशुद्धि है, तो वो अशुद्ध मन परमात्मा के साथ लगता ही नहीं। बाबा कहता सोने का बर्तन ही, बुद्धि रूपी बर्तन सोने का हो तब बाबा के साथ बुद्धि लगे, और बाबा का ज्ञान अमृत उस बुद्धि में बैठे, नहीं तो वो बुद्धि में बैठ नहीं सकता, धारणा नहीं हो सकता। और पांचवी बात है ब्राह्मणों का, जिसका अंक अभी तक खुला नहीं है, क्यों नींद क्यों कर रहे हैं, इतना नींद आ रहा है क्लास में है ब्राह्मण को? सभी देखे आपस में आप पेटों के आसपास जो बैठे नींद कर रहे हैं उनको जगाइए। पांचवा बात है ब्राह्मणों का, सच्चे ब्राह्मणों का ब्रह्माचारी बनना। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने जो आचरण किया, जो धारणा किया, वो सब हमको धारण करना, हमें आचरण में लाना, तब हमें ब्रह्माचारी कहा जाता। बाबा का कई बातों का कदम, 21 कदम, 18 कदम, दादियां उन बातों को हम सबको भेजी है, आप लोग सुने हैं, लिख के भी रखे हैं, वो किताब में है, जीवन में नहीं है। जो जीवन में बाबा ने जो किया वो धारण करते, वो ब्रह्माचारी है। ब्रह्मा बाबा कैसे नष्ट मोही बना, सब साथ में रहते, वो ये परिवार से कितना नष्ट मोही रहा। बाबा के बच्चे यहाँ आने के बाद भी नष्ट मोही रह नहीं सकते, वो भी साथ में घूमना, साथ में बैठना, साथ में रहना, क्यों? बाबा के पास भी ऐसा साथ क्यों चाहिए? बाबा के साथ रहने का, बाबा के साथ चलने का, बाबा के साथ बैठने का, वो अगर कोई अनुभव करते हैं, वो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं। यहाँ ही नष्ट मोहा मधुबन में नहीं बन सकते, एक दो को छोड़ के नहीं रह सकते, तो घर में कैसे रहेंगे है? ये सब प्रैक्टिस हमें सच्चे ब्राह्मण जीवन का अनुभूति करने का सौभाग्य है। मधुबन में वहां भी प्रैक्टिस करके आएंगे, यहाँ ज्यादा अनुभव होगा, क्योंकि ब्राह्मणों का जीवन का बहुत महत्व है। दुनिया में ब्राह्मणों के ऊपर बहुत कहानियां बना हुआ है। बाबा ने भी कहा जो सच्चा ब्राह्मण है वो अर्षित रहता। क्यों अर्षित रहता? उसका शकल किला रहता है। कैसे? हा? उदास नहीं, नींद वाला नहीं, उबासी नहीं, आंख बंद किया हुआ नहीं, ऐसा अर्षित मुख वाला, उसका आंख भी खुला रहता, कान भी खुला रहता, मुंह भी किला रहता है, क्योंकि उनका ज्ञान का मंथन चलता रहता। पहले चिंतन करेगा, बाबा का ज्ञान सुनेगा, जितना सुनते हैं अच्छी तरह, फिर उसका मंथन चलता। तीन बातें अर्षित रहने के लिए, तीन बातों को धारण करना। पहले चिंतन करना है। हाँ, आप लोग आकाशवाणी में सुनते हैं रोज सुबह चिंतन, उनका चिंतन चलेगा, ये चिंतन चलेगा। तो चिंतन को सुनना है, शुभ विचार को पहले सुनना है, फिर मंथन करना, अच्छी तरह उसका विचार सागर मंथन करना। जो अच्छी तरह मंथन करते हैं और वो धारणा करते हैं, जिसका मंथन नहीं होगा वो धारणा नहीं करते। और तीसरी बात है दर्शन, चिंतन, मंथन और दर्शन। रात को बाबा कहता चार्ट लिखो, अपना दर्शन करो, आपने सारा दिन क्या किया, क्या सुना, क्या मनन चिंतन किया और क्या धारणा किया, आपका जीवन की रूपरेखा क्या रही, वो रात को दर्शन करो। ये बाबा बच्चों को कहता है, तीन बातों को धारण करो। ब्राह्मण अर्षित मुख रहने वाला इन तीनों बातों को धारण करते हैं। कहते हैं ब्राह्मण को, एक ब्राह्मण था, ब्राह्मणों हमें हमेशा त्योहार के दिनों में, पुराने जमानों में ब्राह्मण लोग राजा के पास दान लेने जाते हैं। एक ब्राह्मण की पत्नी थी, उसने बोली आप जाओ राजा के पास कुछ दान लेके आओ, क्योंकि वो गरीब थे। तो गया राजा ने एक उसको बहुत बड़ा पेटा, बहुत वजन वाला पेटा दिया। तो ब्राह्मण निराश हो गया, ये क्या राजा मेरे को पेटा दे दिया, इसमें क्या है, इसकी क्या वैल्यू है। फिर भी लेके तो गया, रास्ते में जाते जाते कोई व्यक्ति बैठा था, उसको पूछा इसको आप कितना पैसा देंगे, उसने बोला 2 रुपया। 2 रुपया लेकर के वो पेटा उसको दे के चले गया। घर में बोला पत्नी को, राजा के पास गया, पेटा बहुत वजन था और रास्ते में मैं दे के आ गया, ये राजा देखो सिर्फ पेटा दिया मेरे को। दूसरा दिन भी बोली, 3 दिन त्योहार चल रहा था, पत्नी बोली आज जाओ राजा और कुछ आपको देगा। तो दूसरा दिन भी गया तो राजा देखा कल इतना बड़ा मैंने दिया, आज भी क्यों आया, क्योंकि जिनको ये पेटा दिया था, जिनको इसने दे दिया था, वो इतना वजनदार घर में ले जाके वो थक गया, वो जाके घर में फेंका, तो सारा उसमें जेवर, उसमें जो भी सोना जेवर आदि था वो भरा हुआ था, वो सारा घर फैल गया। वो जल्दी जल्दी लेकर के, अगर उसको पता पड़े जिसने हमको दे दिया, उसको मालूम पड़े तो हमारे से ले लेगा, तो उन्होंने छिपा के सिर्फ पेटा को काट के बाहर रख दिया। बाद में दूसरा दिन गया तो दूसरा दिन राजा ने ऐसे ही और एक और बड़ा पेटा दिया। ये ब्राह्मण और भी निराश, कल भी पेटा दिया आज भी पेटा दे रहा है, वो भी वजनदार पेटा, वो ले जाके रास्ते में वही व्यक्ति बैठा था उसको फिर से 2 रुपये में दे दिया। फिर घर गया, पत्नी को 2 रुपया दिया। फिर तीसरा दिन भी बोली, पत्नी नहीं छोड़ी, आज भी जाओ राजा के पास। राजा वंडर का आया, इसको पहला दिन इतना बड़ा पेटा दिया, दूसरा दिन उससे बड़ा दिया, आज भी क्यों आया ये व्यक्ति, उसको पूछा गया आपने क्या किया, उसने बोला महाराज आपने तो मेरे को सिर्फ पेटा दे दिया, मैं तो वो रास्ते में एक व्यक्ति बैठा था उसको 2 रुपया में बेच दिया, मैं बड़ा निराश हूं। फिर राजा को मालूम पड़ा इसका कम बुद्धि वाला, इसका कितना भी देवे तो ये सारा वेस्ट करता। तीसरा दिन और बड़ा पेटा देके बहुत वजनदार पहरेदार को साथ में भेजा, घर तक छोड़ के आना। वो ब्राह्मण तो संतुष्ट नहीं रहा, सिर्फ पेटा ही पेटा देखता था ना, अंदर क्या है उसको मालूम नहीं था ना। फिर वो पेटा पहरेदार तो रास्ते में दे नहीं सकता था, इसने घर में जाके थक के पत्नी के सामने फेंक दिया, वो सारा गिर के उसमें जो भरा हुआ था वो देखा, तो ये निराश हो गया, मैंने क्या किया, 2 दिन तो राजा इतना सारा बड़ा दिया मेरे को, मैंने मेरे को समझ नहीं है, मैं सारा वेस्ट किया। तो देखिए बाबा के बच्चों को बाबा ज्ञान रतन इतना बढ़िया देता है, कई बच्चे बीके समझ के समझते हैं क्या बाबा वही की वही बातें सुनाता, आत्मा की बातें, परमात्मा को याद करो, धारणा करो, सर्विस करो, वही रोज वही वही रिपीट होता, उसको क्या सुनना है रोज, इसलिए हफ्ते में 1 दिन 2 दिन सुने तो बस। उसको कोई वो ब्राह्मण को महत्व नहीं था ना, ऐसा ये बीके को भी महत्व नहीं है। एक दिन आएगा बाबा ने इतना ज्ञान रत्न हमें दे रहा है, इसकी कितनी वैल्यू है। आप लोग सुने होंगे एक व्यक्ति था मार्केट में बोलता था 1 बात के लिए 1 लाख रुपया, 1 बात के लिए 1 लाख रुपया। राजा मार्केट में गया था, सभी चीजें देख रहा था, तो ये व्यक्ति बोल रहे था 1 बात के लिए 1 लाख रुपया। तो राजा ने बोला आओ मैं तो 1 लाख रुपया देता हूँ, वो बात क्या है सुनाओ। तो घर में गया, उसने बोला 1 ग्लास दिया, आप पीने के पहले सोच के पीना, सोच समझ करके पीना, इसमें कुछ भी पीते हो सोच समझ के पीना। राजा को वो गिफ्ट दे दिया, 1 लाख रुपए उसको दे दिया। एक बार राजा बीमार हो गया, बीमार जब हुआ तभी उसके जो वजीर आदि लोग थे उसको ठगी करके उसको विष पिलाने के लिए प्रबंध किया, सारा तैयारी किया था। वो ग्लास लिया, राजा ने देखा, वो स्लोगन था ना 1 बात के 1 लाख रुपया की सोच समझ के पीना, तो उसने पिया नहीं, कोई कुत्ता को डाला तो कुत्ता मर गया। तो बाद में पता पड़ा उसका 1 बात के 1 लाख रुपया क्यों। ऐसे बाबा भी कहता है बच्चे एक एक रतन के लाखों रुपये वैल्यू है, हमें पता नहीं है इन बातों का, हमें व्यर्थ बातें सुन के इनका उनका दूसरों का ये ब्राह्मणों का और कोई काम नहीं है, बीके वालों का। जब जब मिलते हैं आपस में एक दूसरों के व्यर्थ बातें सुनते रहते हैं, वो सेंटर क्या है ये सेंटर क्या, पहले सुनते थे दुनिया की बातें, वो घर क्या है ये घर क्या है, अभी बदल गया, वो सेंटर क्या ये सेंटर क्या, वो जोन क्या ये जोन क्या है? और वो भाई कैसा ये बहन कैसा, ये कई व्यर्थ बातें सुन करके बाबा की जो ज्ञान रतन है उसकी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बुद्धि में व्यर्थ बातें भर गया है। तो बाबा के रतन बाबा इतना दे रहा है बच्चों को, उसकी वैल्यू नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए अंत में पछताना पड़ेगा, बाबा आपने इतना हमें ज्ञान रतन दिया तो भी मैंने समझा नहीं, मेरा तकदीर नहीं है, मैंने अपनी तकदीर को खो लिया। कहते हैं तकदीर को जगा कर आए हैं यहाँ, क्या तकदीर जगा के फिर सुला दिया, यहाँ आने के बाद सुला दिया व्यर्थ बातें सुन के। अभी अभी एक भाई शरीर छोड़ा मैसूर में, दूसरा भाई ने अनुभव सुनाया, जिसने शरीर छोड़ा वो भाई रोज किसी ना किसी का अवगुण जाके सुनाता था उस भाई को, ये समझाता था ऐसा नहीं सुन देखना, हमें क्या पढ़ा है उसका अवगुण उसके पास रहे, हमें नहीं देखना, हमें वर्णन नहीं करना, आप रोज रोज मेरे को आके नहीं सुनाओ। जिस दिन वो शरीर छोड़ रहा था उस दिन बोला ये मेरा संस्कार ऐसा कैसे छोड़ू मैं, मेरे को ये संस्कार हो गया। अभी वो संस्कार छोड़ने का ज्ञान उसने दिया लेकिन रास्ते में चलते चलते उसको हार्ट अटैक होकर शरीर छोड़ दिया। संस्कार को कैसे परिवर्तन किया, कहा टाइम कहाँ रहा। इसलिए बाबा कहता है व्यर्थ बातें सुनने की जो आदत है और दूसरों को परचिंतन करके दूसरों को सुनाने की आदत है, वो ज्ञान की बातें ना सुन सकते ना सुना सकते ना अच्छे संस्कार बना सकते ना दैवी गुण धारण कर सकते ना अच्छी तरह अपने जीवन को वैल्यूबल जीवन नहीं बना सकते, दूसरों के ऊपर एग्जाम्पल नहीं बन सकते, तो वो उसका जीवन व्यर्थ जाता, अच्छा संस्कार वाले नहीं बन सकते। तो इसलिए हमें सच्चे ब्राह्मण माना बाबा का ज्ञान रत्न को अच्छी तरह समझ करके धारण करके और अनुभव करके दूसरों की सेवा करके हमें संस्कार बनाना, ये संस्कार बनाने का ये समय संगम युग है। संगम युग में ही हम सच्चे ब्राह्मण बन सकते हैं, इसके अलावा कभी नहीं बन सकते। तो इसलिए आपको याद रहे हमें किसी का भी व्यर्थ बातें ना सुनना है, ना किसी को सुनाना है, ना किसी का चिंतन करना है। पहले बोलते हैं जिसका दूसरों का अगर कोई वर्णन करते उसके ऊपर पाप आ जाता। बाबा कहता वर्णन करना क्या, मन में चिंतन करेंगे तो भी पाप आ जाएगा। एक कहानी सुनाते हैं, एक बार ब्राह्मण राजा ने बहुत बड़ा ग्राउंड में ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाने का व्यवस्था किया था। तो बहुत बड़े ग्रुप में ब्राह्मण आ गए भोजन खाने के लिए, ब्राह्मण भोजन प्रिय है ना। तो उस दिन क्या हुआ, अचानक बड़ा अच्छा अच्छा भोजन बनाए थे राजा ने, वो जो छीला ना हद पर, वो सांप को पकड़ के जा रहा था ऊपर जहां भोजन बनता था, उसको अच्छी तरह पकड़ लिया चील ने तो उसका विष वो भोजन के ऊपर पड़ गया। किसी को पता नहीं, राजा को भी पता नहीं, भोजन बनाने वालों को भी पता नहीं, भोजन खाने वाले ब्राह्मणों को भी पता नहीं। फिर पहला ग्रुप में जो ब्राह्मण बैठे थे भोजन खाने वाले, वो सब भोजन करके ऐसे ही बैठे थे, कोई उठे नहीं। क्यों? विष खा लिया तो मर गए। फिर सभी ने सोचा, फिर चित्रगुप्त, जिसको चित्रगुप्त बोलते हैं ना, उसने धर्मराज के पास गया, उसको मालूम पड़ा ये राजा ने भोजन बनाया, ब्राह्मणों ने भोजन बनाया, उसने प्रोग्राम दिया, सारा अरेंज किया, इन्होंने बनाया, इन्होंने खाया, चील और सांप का विष पड़ा, अभी किस पर पाप चढ़ेगा। तो धर्मराज ने बोला थोड़ा दिन देखो, थोड़ा दिन वेट करो, आपको मालूम पड़ेगा किस पर पड़ेगा। फिर एक ब्राह्मणों का ग्रुप राजा को देखने के लिए जा रहे थे, तो वहां पर एक फूल बेचने वाली बहन बैठी थी, उसको पूछा गया ये राजा का महल कहाँ है। तो उसने बोली राजा का महल तो इधर ही है, आप लोग मत जाना, ये राजा तो सब ब्राह्मणों को मार रहा है। फिर वो लोग डर गए। फिर मालूम पड़ा थोड़े दिन में चित्रगुप्त भी गया, तो चित्रगुप्त को भी वही बात सुनाई उसने। फिर धर्मराज को बोला उसने मेरे को मालूम पड़ा कौन सा राज है, किसके ऊपर पाप चढ़ेगा। तो पाप उसके ऊपर चढ़ा जो माता ने राजा के ऊपर झूठ बोल दिया, क्योंकि राजा ने तो नहीं मारा, भोजन बनाने वाले भी नहीं मारा, और सांप चील ने सांप खाने के लिए लेके जा रहा था उसने भी मारने के लिए नहीं किया, किसी का कसूर नहीं है, कसूर है पाप किसको छोड़ा, जिसने झूठ बोला, वो माता ने झूठ बोल दिया। तो इसलिए ध्यान रखना, जो भी बातें हमको मालूम नहीं रहता है किसी का, उसके ऊपर कोई झूठ बोल देते हैं, वो झूठ का भी बहुत असर है। चाहे यज्ञ की बातों के ऊपर झूठ बोलते हैं, चाहे ब्राह्मणों के जीवन के बारे में झूठ बोलते हैं, चाहे सर्विस के बारे में झूठ बोलते हैं, कोई भी बात में अगर कोई झूठ बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत पाप चढ़ता है, सबका पाप उसके ऊपर चढ़ जाता। व्यर्थ बातें सुनने सुनाने वालों को, दूसरों को बाबा से वंचित करने वालों को, श्रेष्ठ ब्राह्मण उसको कहा जाता है जिसका बुद्धि योग बाबा से जुड़ा है, अपने से भी ना जुड़ा है, अपना भी मोह ममता निकाल के उनका कनेक्शन बाबा से जुड़ा है, उनको सच्चा ब्राह्मण कहा जाता। तो हम क्या कर रहे हैं, व्यर्थ बातें सुना के बाबा से दूर कर रहे हैं या बाबा से जुड़ा रहे हैं, ये हमें अपने आप को जांच करना होगा। सच्चा ब्राह्मण बनके सच्चा जीवन को चलाना है, सच्चे ब्राह्मण बनेंगे तो हम गारंटी वैष्णव बनेंगे। वैष्णव कितना शुद्ध होते हैं, लौकिक में वैष्णव वो होते हैं जो किसी का भी स्पर्श नहीं करते, लौकिक वैष्णव, लेकिन वो भी विकारी होते हैं, वो भी अपवित्र होते हैं, उनको बाल बच्चे गृहस्थी सब होते हैं। केवल उनको जाति में वैष्णव है तो कितना अपने को नशा चढ़ा के बैठे हैं, है? कर्म में वैष्णव नहीं है, जीवन में वैष्णव नहीं है, केवल जाति में वैष्णव, जाति में ब्राह्मण, इतना उनको नशा चढ़ा हुआ होता। लेकिन बाबा हमें कौन सा ब्राह्मण बनाया, सच्चा ब्राह्मण, जिन्होंने लौकिक में जनेऊ पहनते हैं, कई रक्षाबंधन के टाइम एक उपाकर्म त्योहार आता है, उस समय ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं, तीन धागे वाला, सिर्फ धागा पहनने से उनका मरुजन्म हो जाएगा, सच्चे ब्राह्मण बन जाएंगे, वो तो बनने वाले कोई नहीं है। लेकिन बाबा ने हमको सच्चा ब्राह्मण बनाया, जनेऊ कौन सा पहनाया बाबा ने, स्थूल धागा नहीं पहनाया बाबा ने, बाबा ने हमें मन वचन कर्म में शुद्ध रहना, पवित्र रहना, श्रीमत पर चलना, ये सब सिखाया है। जो संकल्प में भी श्रीमत पर चलते हैं, वचन में भी श्रीमत पर चलते हैं, वचन उनका दूसरों को शांति देंगे, दूसरों को उमंग देंगे, उल्लास बढ़ाएंगे, प्रेरणादायक होगा, उनका महावाक्य होता है। दोस्त जो दूसरों को सब बातों में उमंग बिगाड़ते हैं, शांति बिगाड़ते हैं, वो श्राप होगा। हम बाबा के बच्चों को, सच्चे ब्राह्मणों को श्राप किसी को नहीं देना, सबको आशीर्वाद देना, सबको उमंग उल्लास बढ़ाना, सबको पवित्र रहने का प्रेरणा देना, सबको खुश रहने का खुशी देना, ये सब बाबा ने हमें सच्चे ब्राह्मणों के लिए, बाबा ने वरदान रूप से अपना हमारा जीवन को भी श्रेष्ठ बना करके हमारा जीवन द्वारा सबका जीवन बना रहा है। तो कितना हमारा श्रेष्ठ भाग्य है, इस भाग्य से कभी हमें वंचित नहीं रहना। बाबा कहता है कुमार को एक ब्राह्मण 100 ब्राह्मणों से उत्तम है, लेकिन वो कुमार वो ब्राह्मण बन के चले तो, सच्चे ब्राह्मण बन के चले तो, नहीं तो क्या करेगा। इसलिए बाबा ने ब्राह्मणों का जीवन का बहुत महत्व दिया, दुनिया में बहुत महत्व है सिर्फ जाति के नाम से, लेकिन हमारा कर्म से, हमारी धारणा से, हमारा जीवन से, बाबा के बच्चे यहाँ पर जो भी काम करे, चाहे झाड़ू लगावे, चाहे पोछा लगाए, चाहे बर्तन मांजे, चाहे भोजन बनाए, चाहे कुछ भी सेवा करे, सच्चे ब्राह्मण होके करें। ऑलराउंड सेवा कर सकते, सब प्रकार की सेवा कर सकते, उसमें कोई कम पद बड़ा पद की बात नहीं है, लेकिन सच्चे ब्राह्मण बनके जो चलते हैं उनका भविष्य पद श्रेष्ठ होता जाएगा और वर्तमान जीवन भी उसको श्रेष्ठ गाया जाता, उसकी बहुत बड़ी मान्यता होती है प्रैक्टिकल जीवन में। जिन्होंने भी बाबा के बच्चे प्रैक्टिकल जीवन बनाया है उन ब्राह्मणों को आज भी दुनिया में बहुत मान्यता देते हैं। एक ऑफिस में बाबा के बच्चे दो बच्चे जाते, एक बाबा को बच्चा को बहुत मान्यता देते, दूसरा को नहीं देते, क्योंकि एक बच्चा जो प्रैक्टिकल जीवन वाला उसको सभी रेस्पेक्ट देते, जो प्रैक्टिकल नहीं है वही लौकिक जीवन बना के रखे, झगड़ा करना, चुगली मारना, व्यर्थ जीवन चलाना, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं, लौकिक वाले भी नहीं देते, भले उनको ज्ञान नहीं है तो भी वैल्यू उनके पास नहीं है। तो इसलिए हमें बड़े समझदार बन करके बाबा की बच्चे बने हैं, सच्चे ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण ही योगी बन सकते हैं। हमें बाबा गृहस्थ में रहते हुए, घर में रहते हुए, सेंटर में रहते हुए, शहर में रहते हुए हमारा जीवन को योगी बनाया। दूसरे कोई योगी, कोई जंगल में जाने वाले भी कोई नहीं, अभी सभी शहर में आ गए, लेकिन हमारे जीवन को बाबा इतना ऊंच बनाया, इतना श्रेष्ठ बनाया, दुनिया में कोई भी ऐसा ना ज्ञान दे सकते, ना कोई ऐसा पवित्र जीवन सिखला सकते हैं, हमारा जीवन को ऐसा कोई शुद्ध बना सकते कोई भी व्यक्ति नहीं है। केवल परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा प्रैक्टिकल जीवन दिखा करके, ब्रह्मा बाबा का प्रैक्टिकल जीवन, दादियों का प्रैक्टिकल जीवन हमें एग्जाम्पल है। हम सब अंधश्रद्धा से नहीं चलने का है, मूढ़मती होके चलने का नहीं है, हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत है। बाबा के घर में, बाबा के बच्चों में है, उनको देखते हुए हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का। बाबा तो हर मुरली में सी फादर सी मदर बताया हुआ, मम्मा बाबा को अगर याद करें, मम्मा बाबा ने कितना श्रेष्ठ जीवन अपनाया, तो उसको हम लोग फॉलो करें तो हमारा जीवन सच्चा ब्राह्मण, सच्चा श्रेष्ठ जीवन, सच्चा योगी जीवन, ब्राह्मण से सो वैष्णव जीवन, सत्य में दैवी जीवन हमारा बन जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप सच्चे ब्राह्मण जीवन को कहाँ तक अपनाया वो जांच करके अपने जीवन के सभी भागों में चेकिंग करके अपना जीवन को सच्चा ब्राह्मण बनाने का दृढ़ संकल्प करके बाबा का आने तक ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ महत्व में अपना मन में धारण करके बाबा के इस प्रांगण में या बाबा के इस शांति वन के जहाँ भी प्रांगण है वहाँ पर कोई आवाज ना हो। आप लोगों को हम अनुभव सुनाती हूँ, हमारे पास भट्टिया होती है, मौन भट्टिया, इतना रिस्ट्रिक्शन है, 7 दिन क्या 21 दिन मौन भट्टी करते थे हम लोग, 21 दिन कोई भाई बहने बात नहीं करती थी, चाहे टीचर होवे, चाहे भाई होवे, बहन होवे, कोई भी बात नहीं करते थे। अब 21 दिन कोई समय नहीं निकाल सकते, एक जमाना था 21 दिन का मौन भट्टी हम लोग 2 साल 3 साल किया। फिर बाबा इस डायमंड जुबली को जब ओपनिंग किया, क्योंकि ये प्रेरणा हमारी बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी ने दी थी मेरे को, दादी हम सभी टीचर्स को बताई थी आप लोग मौन करो 21 दिन मौन करो, मैं भी करती हूँ, दादी तो प्रैक्टिकल करती थी, तो हम लोगों ने किया, तो दादी को बताया तो दादी बोली आप मधुबन में आएंगे तो अनुभव सुनेंगे। जब यहाँ का ओपनिंग हुआ बाबा आया तो बाबा के सामने दादी मेरे को बुलाई, मेरे को आश्चर्य लगा, दादी बड़ों के सामने और दादी बाबा के सामने मेरे को क्यों बुलाते। तो सभी ने बोला आपको चांस मिल रहा है, आप जाओ बाबा के पास जाओ, दादी के पास जाओ। स्टेज पर आई तो बाबा को दादी बोलती है, लक्ष्मी तुमने 21 दिन का मौन भट्टिया जो कराई और खुद किया उसका अनुभव बाबा को सुनाओ। अब इतनी बड़ा सभा हाँ 25-30 हजार लोगों की सभा और दादिया सब बैठी है उनके सामने, मेरे को बाबा को क्या अनुभव सुनाऊ। मैं बोली बाबा दादी ने डायरेक्शन दी, हम लोगों ने पालन किया, सबको बड़ा अच्छा अनुभव हुआ उसका। वो बट्टी से कई ब्राह्मणों का जीवन भी बहुत आगे बढ़ गया, सारा सेवा भी आगे बढ़ गया, कई लोगों को ये प्रेरणा मिली। यहाँ तक जो जगत गुरु लोग जो मौन ही नहीं रहते थे, उन्होंने मौन स्टार्ट कर दिया हमारा मौन को देखते हुए, क्योंकि उनके फॉलोवर्स यहाँ पर आए, बाबा के बच्चे बने। उनको हमने बुलाती थी जगत गुरु लोगों को बट्टी का स्टार्टिंग उद्घाटन करने, फिर समाप्त के समय अनुभव सुनने। वो आके जब भी उद्घाटन करते थे, उनके शिष्य लोग जब ज्ञान में आए तो उनको बात करने चाहते थे, वो लोग बात नहीं करते थे। तो बोले ये लोग गृहस्थ लोग ये बात नहीं करते। फिर उन्होंने उसके बाद 1 महीना मौन रहना, 15 दिन मौन रहना उन्होंने चालू कर दिया। ये बाबा के बच्चों ने मौन रहा है, गृहस्थ लोग मौन है, हम लोग क्यों नहीं रह सकते। ये मौन का जीवन मधुबन में अभ्यास करना। मधुबन में सारा दिन जितना मौन रहेंगे उतना हमारा जीवन बहुत ऊंचा हो जाता, वही जीवन आगे बढ़ जाता। घरों में आप जाएंगे, सेंटरों में जाएंगे, कम बात करेंगे, व्यर्थ सारा छूट जाएगा, तो हमारा जीवन बहुत ऊंचा बन जाएगा। बाबा का मदद भी मिल जाएगा, बाबा से जो भी हमें वरदान मिलना वो सब मिल जाएगा, हमारा भाग्य की ज्योति जग जाएगा, हम ऊंचे तकदीर वाले बन जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, बाबा आने तक सबको अगर जरूरी बात करना है तो किसी को दूसरों को सुनने में नहीं आए। आप सबको मालूम है यहाँ क्लास में ये मोबाइल को तो रखना ही नहीं है, सबको बंद करके रखना, और दूसरा आपस में बात भी नहीं करना, जरूरी बोलना है तो कान में दूसरों को नहीं सुनाई पड़े। माताएं बहुत बात करती है, सुबह उठ के जोर से चिल्ला के बात करती है, हाँ? तो ये माताओं से भी निवेदन है, माताएं विशेष आप मौन रहेंगे तो भाई लोग भी रह जाएंगे जो भी बात करने वाले हैं, हाँ? तो हम सभी एक साथ संगठन में बाबा के साथ ये संकल्प करेंगे। बाबा ने जो मन का डांस करने के लिए हमें होमवर्क दिया, हमें मन से बाबा से मिलके वो शांति का अनुभूति करते हुए फिर से बाबा से मिलेंगे। बाबा वो होमवर्क जो दिया उसका रेस्पॉन्ड बाबा हमारे से पूछेगा, हमने क्या होमवर्क किया, क्या अनुभव किया। फिर बाबा हमें और एक होमवर्क देगा और आगे हमें बाबा बढ़ाएगा, हमें कितना ऊंची स्थिति बाबा बनाएगा। तो इसलिए ऐसे बातों को स्वीकार करने के लिए अपने आप को भी तैयारी करना होगा। तो इसलिए हम सभी भाई बहने जो भी मधुबन में आए, हम मन ही मन शांति का डांस करते हुए सारा दिन अपना जीवन बिताएंगे, ज्ञान रत्नों को लुटेंगे और योग भी अच्छा करेंगे, इस शांति वन को शांति बना के रखेंगे।